नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्र आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सैन्य शक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव शासन में निरंतरता को बढ़ावा देगा, नीतिगत अवरोध रोकेगा और वित्तीय बोझ कम करेगा। इस वर्ष के पद्म पुरस्कारों के लिए 139 प्रतिष्ठित विभूतियों का चयन किया गया। इनमें सुशील मोदी, शारदा सिन्हा, न्यायमूर्ति जेएस खेयर, एल सुब्रमण्यम, ओसामा सुजुकी और पीआर श्रीजेश प्रमुख हैं। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अधिसूचित की और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को 2 विकेट से हराकर 5 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना ली। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहतनाज, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में परेड की सलामी लेंगी। गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य कौशल का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा और इस समय कर्तव्य पथ पर हमारे संवाददाता देवेंद्र त्रिपाठी मौजूद हैं। देवेंद्र
जी फरहत,
कैसा दृश्य वहां पर देखने को मिल रहा है?
फरहत, यहां पर बहुत ही उल्लास दिखाई पड़ रहा है और जैसा कि अगर हम आकाशवाणी की कमेंट्री बूथ से देख पा रहे हैं, दोनों तरफ जितनी भी कुर्सियां लगी हैं सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया है और दर्शकों में जबरदस्त जोश और उत्साह। कड़ाके की ठंड, आज सुबह ठंड बढ़ गई थी लेकिन इसके बावजूद लोगों ने ठंड की परवाह किए बिना इस राष्ट्रीय उत्सव का साक्षात्कार करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और अच्छी बात यह है कि अब धूप अच्छी खिलने लगी है और जो कर्तव्य पथ है बहुत ही सजीला और संवरा नजर आ रहा है। तिरंगे दोनों तरफ लगे हुए हैं और पश्चिमी हवा चल रही है, उसमें तिरंगे लहरा रहे खूबसूरती से और साथ में दोनों तरफ 75 वर्ष संविधान के ये एक बोर्ड लगाए गए हैं और ये 75 वर्ष जो पूरे हुए संविधान को लागू किए, 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं अपने संविधान को लागू किए, तो इसका एक बहुत ही अद्भुत दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और सामने जैसा कि आप जानते हैं कि कमेंट्री बूथ के बगल जो सलामी मंच है जहाँ से माननीय राष्ट्रपति सलामी लेंगी तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, उसके सामने बना है भारत का वो राष्ट्रीय चिन्ह सिंहशीर्ष और बहुत ही सुंदर फूलों से उसे चारों तरफ सजाया गया है। भारत का मानचित्र उस पर उकेरा गया है पुष्पों से और साथ में यहाँ पर गणमान्य अतिथियों का, मंत्रीगणों का आगमन प्रारंभ हो गया है, अधिकारियों का आगमन प्रारंभ हो गया है और कर्तव्य पथ पर भी हलचल शुरू हो गई है। लोगों को अब प्रतीक्षा है जल्द से जल्द आज के आयोजन के औपचारिक शुभारंभ की, जिसकी शुरुआत होती है समर स्मारक पर प्रधानमंत्री के आगमन और सैनिकों के वीर बलिदान को नमन करने के साथ। जी फरहत
जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि गौरवशाली गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। वे उन सभी महान महिलाओं और पुरुषों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं जिन्होंने संविधान की संरचना में महान भूमिका निभाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुब्यांतो का स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए राष्ट्रपति सुब्यांतो का स्वागत करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों साल पुराने संबंध हैं। राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए श्री सुब्यांतो का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय तटरक्षक कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और तटरक्षक पदक स्वीकृत किए हैं। ये पुरस्कार तटरक्षकों के अदम्य साहस, कर्तव्य परायणता, समर्पण और उनकी सराहनीय सेवा को मान्यता देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 93 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मी हैं जिनमें 11 को मरणोपरांत सम्मानित किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और अन्य कर्मियों को 305 रक्षा अलंकरण से सम्मानित करने को भी स्वीकृति दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने अपने संदेश में कहा कि 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा में भारत और अधिक सशक्त तथा समृद्ध हुआ है। दिल्ली मेट्रो ने समारोह को देखते हुए कर्तव्य पथ पर पहुंचने वाले लोगों की सुविधा के लिए मेट्रो सेवाएं आज सुबह 3 बजे से शुरू कर दी हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाकुंभ के गंगा पवेलियन में विशेष रूप से भारत की अनुपम सांस्कृतिक छटा को दर्शाने वाली प्रस्तुतियां दी जाएंगी। ये श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अनूठा अनुभव प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम आध्यात्मिकता, भारतीय संस्कृति और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत रहेंगे।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाकुंभ के सभी 4 मंडपों गंगा, यमुना, सरस्वती और त्रिवेणी पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत और लोक कला का प्रदर्शन किया जाएगा, जो दर्शकों को अध्यात्म का अनुभव कराएगा। एक तरफ जहां फरवाही, बिरहा, आल्हा के जरिए उत्तर प्रदेश की ग्रामीण संस्कृति से देश विदेश के श्रद्धालुओं को रूबरू कराया जाएगा, तो वहीं कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कथक के साथ साथ अन्य शास्त्रीय संगीत का भी आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा शाम के समय श्रद्धालु आकर्षक ड्रोन शो के द्वारा भारतीय संस्कृति और इसकी समृद्ध विरासत का भी अनुभव कर सकेंगे। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अब तक लगभग 11 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संसद में पेश एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक में सुशासन की शर्तों को फिर से परिभाषित किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव योजना शासन में निरंतरता को बढ़ावा दे सकती है।
एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था से शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है। नीति निर्धारण से जुड़े निष्क्रियता समाप्त की जा सकती है। संसाधनों की अन्यत्र खर्च हो जाने की संभावना कम हो सकती है तथा वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है। इनके अलावा जनहित में अनेक अन्य लाभ भी हो सकते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हमेशा से भारत की सभ्यतागत विरासत का हिस्सा रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक विकास दर में लगातार वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को स्वीकृति दी है। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं। इस सूची में विदेशी, अप्रवासी भारतीय, भारतीय मूल के लोग और भारत के विदेशी नागरिक श्रेणी की 10 विभूतियां और 13 अन्यों को मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय लेखक एमटी वासुदेवन नायर, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी और गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वहीं गायक पंकज उधास और अर्थशास्त्री विवेक देवराय को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेर और एल सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण, हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश को पद्म भूषण और क्रिकेट खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन तथा फुटबॉल खिलाड़ी आईएम विजयन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत को इन विजेताओं की असाधारण उपलब्धियों का सम्मान करने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि उनका समर्पण और दृढ़ता वास्तव में प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पुरस्कार विजेता कड़ी मेहनत, जुनून और नवाचार के पर्याय हैं, जिन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए अगले महीने की 5 तारीख को मतदान होगा। आकाशवाणी समाचार मतदान पर विशेष श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है। आज प्रस्तुत है मालवीय नगर निर्वाचन क्षेत्र का लेखा जोखा।
इस सीट पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती, जो लगातार 2013 से चुनाव जीतते आ रहे हैं, फिर एक बार राजनीतिक अखाड़े में हैं। इस बार सोमनाथ भारती के लिए मालवीय नगर की राह आसान नहीं है, क्योंकि भाजपा ने इस सीट पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को मैदान में उतारा है। वहीं चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस ने जितेंद्र कुमार कोचर पर दांव लगाया है। दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र की इस सीट पर 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में सोमनाथ भारती ने भाजपा के शैलेंद्र सिंह को 18,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। 1.5 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाली इस सीट पर मिश्रित आबादी की वजह से यहां किसी एक जाति या समाज का वर्चस्व नहीं है। मालवीय नगर के लोगों के बीच पानी की निकासी, पार्किंग की समस्या और साफ सफाई जैसे मुद्दे प्रमुखता से अपनी जगह बना रहे हैं। शकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्र ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के कार्यान्वयन को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। कल जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यूपीएस उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो एनपीएस के तहत इस विकल्प को चुनते हैं। केंद्र सरकार के मौजूदा और भविष्य में सेवा में आने वाले कर्मचारी या तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूपीएस विकल्प चुन सकते हैं या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली विकल्प के बिना एनपीएस जारी रख सकते हैं। खेलों में पुरुषों की हॉकी इंडिया लीग में अर्शदीप सिंह के शानदार 2 गोल की बदौलत हैदराबाद तूफान ने कल रात राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में यूपी रुद्रास को 3-1 से हरा दिया। वहीं महिला हॉकी इंडिया लीग में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब का खिताबी उड़ीसा वॉरियर से होगा। एक रिपोर्ट।
टीम गोनासेका ने 25 जनवरी शनिवार को राउरकेला में खेले गए पुरुष हॉकी इंडिया लीग के पूल बी मैच में तमिलनाडु ड्रैगन्स को 4-2 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। दिन के दूसरे मुकाबले में अर्शदीप सिंह हैदराबाद तूफान के लिए मैच विजेता साबित हुए, क्योंकि उनके 2 गोलों की बदौलत टीम ने शनिवार को पुरुष हॉकी इंडिया लीग के मैच में यूपी रुद्रास को 3-1 से हराया। ओडिशा वॉरियर्स और जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब पहली महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 के फाइनल में आमने सामने होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह ऐतिहासिक मुकाबला आज 26 जनवरी को रांची में 6 बजे से होगा। आकाशवाणी के लिए मैं।
वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल रात दूसरे T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड पर 2 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में 166 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 19 ओवर और 2 गेंदों में 8 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। इस जीत के साथ ही भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने 76वें गणतंत्र दिवस पर भारत की बहुरंगी छटा को प्रदर्शित करते हुए समाचार प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, परमवीर चक्र सम्मान की स्थापना के 75 साल आज पूरे। सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार से सम्मानित सभी 21 जाबाजों को नमन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन सभी समाचार पत्रों में है। जनसत्ता लिखता है, राष्ट्रपति ने कहा, एक देश एक चुनाव पहल से नीतिगत निष्क्रियता खत्म होगी। राजस्थान पत्रिका ने कुपवाड़ा में 0 से नीचे तापमान के बीच LOC पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रसन्न मुद्रा में भारतीय सेना के जवानों की तस्वीर प्रकाशित की है।
धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सैन्य शक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव शासन में निरंतरता को बढ़ावा देगा, नीतिगत अवरोध रोकेगा और वित्तीय बोझ कम करेगा। इस वर्ष के पद्म पुरस्कारों के लिए 139 प्रतिष्ठित विभूतियों का चयन किया गया। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अधिसूचित की और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को 2 विकेट से हराकर 5 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।